गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। ब्रह्मलीन श्री 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 स्वामी प्रेमपुर जी महाराज, श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा और आप सब के हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। आइए ये तीसरे श्लोक को फिर से एक बार पढ़ेंगे। आरुरुक्षोर्मुने योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। हरिः ओम। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्यैव। जो योगारूढ़ है उसके शमः, शमः है कारण उच्यते। जिन्होंने अपने जीवन में शमः का पालन किया है वो योगारूढ़ हो सकता है। षड संपदा है शमः, दमः, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। शम होता है मन का शमन, दम होता है मन का दमन, तितिक्षा होती है कि गर्मी है, सर्दी है, सुख है, दुख है, मान है, अपमान को सहन करना, उपरति आत्मस्थ होना, श्रद्धा परमात्मा में, गुरु में, अपने आप में पूरी श्रद्धा, समाधान कोई शंका नहीं। आर्मी में कमांडर जब हुक्म देता है तो बोलता है बाएं चलेंगे, कोई शक? ऐसे पूछता है। नहीं सर, तो बोलते हैं प्रोसीड, कोई शक? ऐसा बोलता है। पूरी सूचना देने के बाद में आर्मी का कमांडर पूछता है कोई शक? शक है तो डूब जाएगा, शक है तो श्रद्धा नहीं है, शक है तो निर्णय नहीं है। तो ये शम क्या होता है? मन की संतुलना का नाम शम है। ये समत्व बुद्धि ही योग का सार है। समत्व बुद्धि को सबसे पहले समझना चाहिए। हमारे महाभारत में एक कथा है कि तुलाधार वैश्य कौशिक नाम का ब्रह्मचारी अपने वृद्ध अंध दुखित माता पिता की सेवा करता है। सेवा करते करते आकस्मिक उसके मन में आया, कब तक ये करता रहूंगा, भगवान की प्राप्ति कैसी होगी? उसने एक दिन मां से कह दिया, मैं तंग आ गया हूं, मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, कोई हेतु नहीं है, मैं चाहता हूं भगवत प्राप्ति करूं। हां हां, खुशी से जाओ मां ने कहा, तुमने बेटा बहुत सेवा की, हमारा अपना कर्म है, तुम जाओ बेटा। और गया, प्रामाणिक था, एक पांव पर खड़ा हो गया, पहले कंदमूल छोड़ दिए, फिर पत्ते छोड़ दिए, फिर पानी छोड़ दिया, फिर नाक दबाया। और एक दिन ऊपर से कोई चिड़िया जा रही थी, उसने अपना बीट कर दिया सिर में, ऐसे देखा चिड़िया जल गई, तो लगा ये तो उचित नहीं हुआ, मेरी साधना के अतिरिक्त मुझे क्रोध तो होना नहीं चाहिए था। अभी आया है सुलभादीन क्या, सुलभा जी बड़ी पतिव्रता है, भगवती भिक्षा देगी। आई महाराज, वो धान कूट रही है, वो भगवती भिक्षा देही कहा, आई महाराज कहते कहते सुलभा के पति आ गए। तो उन्होंने क्या किया, वो जो संबल था उसको हवा में छोड़ दिया, नीचे नहीं आया। पति को पांव धुलाए, पति को भोजन दिया, पति को जल दिया, मैं बाहर अतिथि है उनको भोजन दे दो, पूछा हाँ दे दो। तो बाहर आई फल लेकर के, अब कौशिक आग बुलबुला हो रहा है, इतनी देर से हम खड़े हैं। सुलभा जी ने कहा गुस्सा मत करो, मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं कि जल जाऊं। अरे माई मैं ये तो जानना चाहता हूं, मैं कहता हूं ये फल लो और सामने गांव में जाओ, वहां सजन कसाई रहता है, वो आपको ज्ञान देगा। सजन कसाई ने दूसरे कहा अरे कौशिक महाराज उधर रहना, इधर नहीं आना, यहां मीट बेचते हैं उसमें आपका आना उचित नहीं। फिर वो क्या किया, वो साफ सूफ करके आइए, कहिए क्या सेवा करेंगे। आज सुलभा जी ने भेजा है ना, चलो चलो। घर गया तो अंधी माता पिता है, उनकी सेवा कर रहा है। तो माता पिता ने कहा बेटे तेरे को छोड़ के और किसी और की भी सांस सुन रहे कौन है? ये कौशिक ब्रह्मचारी जी है, आपके जैसे इसके बुजुर्ग माता पिता रहे, उनकी सेवा करता था और आकस्मिक ध्यान भजन का ध्यान हुआ, जंगल चला गया, बड़ा पवित्र है, अन्न छोड़ दिया, कंदमूल छोड़ दिया, पत्ते छोड़ दिए, पानी छोड़ दिए, अब नाक भी बंद करके हवा छोड़ी। बस एक दिन चिड़िया ने सिर में गंध कर दिया तो गुस्से में देखा ऊपर, बस गुस्से में क्या, ऊपर देखते ही चिड़िया जल गई। अब हड़बड़ा गया है क्या करूं, तो सुलभा माता जी के पास गया था, उन्होंने कहा सज्जन के पास चले जाओ। तो हम क्या करेंगे? अरे क्या करेंगे, यही बोलेंगे वापस जाओ माता पिता की सेवा करो। ये हड़बड़ाया है और सुलभा ने कैसे जाना, ये सज्जन ने कैसे जाना, सुलभा ने पति परायणता से जाना और सज्जन ने कैसे जाना। कहता है मैं कल का कटा हुआ मांस आज बिक्री करता नहीं, करता हूं तो कह देता हूं ये कल का है, बासी है, आज का है। मैं तुलाभार वैश्य से ज्ञान पाया हूं, क्या ये डंडी को ठीक रखता हूं, इधर भी नहीं उधर भी नहीं। समत्वम योग उच्चते, जीवन में संतुलना होनी चाहिए। ये हमारे जो अखबार आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, समाचार पत्र। ये समाचार क्या होता है, सम्यक आचार, उसमें संतुलित समाचार हो, किंतु ऐसे होता नहीं। वो परसों तरसों नितिन मुकेश के बेटे की जो फिल्म रिलीज हुई, तो दूसरे दिन मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ, बोले कि कलेक्शन वाइज तो बहुत अच्छा हो गया है, रिव्यू ठीक नहीं है। हमने कहा रिव्यू लिखने वाले को पैसा देना पड़ता है, खुद रिव्यू लिख के देना पड़ता है भाई, ऐसे छापना, अगर तुम लिख करके ना दो तो फिर वो अपनी मर्जी से जो आएगा वही छापेगा, और अच्छा छापेगा वो जरूर नहीं है, घटिया ही छापेगा, क्योंकि तुमने उसके मुंह में थोड़ा नहीं डाला है दान पात्र में, तो मीठा कैसे बोलेगा वो। मृदंग बजाने के लिए भी उधर थोड़ा आटा लगाना पड़ता है तो वो मीठा बजता है। तो ये समाचार पत्र में सम्यक आचार नहीं है। वो हाथ वाले का अखबार है तो हाथ की ही यशोगान करता रहता है, और कमल वाले का अखबार है तो कमल की यशोगान करे, किंतु कमल की यशोगान करना बुरा नहीं है, हाथ की निंदा ही करता है, हाथ वाला कमल की निंदा करता है। तो ये सम्यक आचार नहीं हुआ हमारे जीवन में, ये सम्यक एक्सट्रीम नहीं होना। एक तो ज्वार है नहीं तो भाटा, द्वंद्व तो है जीवन में, सनराइज है तो सनसेट है, सूर्य उदय हुआ तो सूर्य अस्त होगा, संगीत में आरोह है तो फिर अवरोह है, ये लिफ्ट जो ऊपर लेके आती है वही नीचे भी लेके जाती है, सीढ़ी जहां से ऊपर चढ़ते हैं उसमें से नीचे भी उतर सकते हैं, समुद्र में ज्वार है और भाटा भी है, अभी एक पूर्णिमा है तो अमावस्या भी है, दिन है तो रात है, जन्म है तो मृत्यु है, दोनों एक्सट्रीम है। नचिकेता के पिताजी ने कहा तू चुप रहे तू क्यों बोलता है, नचिकेता ने कहा बहु नामिमी प्रथमा बहु नामिमी मध्यमा, वो कहते हैं कि कहीं तो मैं विशेष हूं, कहीं तो मीडियोकर हूं, हॉपलेस तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं मध्य में तो रह सकता हूं। ये मध्य में रहने की जो बात है समत्व, कोई आदमी कहता है मैं खाता हूं तो खाता ही रहता हूं, नहीं खाता हूं तो नहीं खाता हूं, बोलता हूं तो बहुत बोलता हूं, नहीं बोलता हूं तो नहीं बोलता हूं, सोता हूं तो सोता ही रहता हूं, नहीं सोता हूं तो ये दोनों एक्सट्रीम कृष्ण बोलते हैं, दोनों में से एक भी योग नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुख कहा। देखो भाई, संतुलित जितना आवश्यकता हो इतना बोलो, आवश्यकता है उतना देखो, आवश्यकता है उतना सुनो, जो नहीं है उसके प्रति घृणा भी नहीं है, द्वेष भी नहीं, व्यवहार भी नहीं। एक बात याद रखना चाहिए, किसी से जिस क्षण प्रेम हो गया उस क्षण उससे नफरत भी होना चालू हो जाएगी, क्योंकि प्रेम के पीछे पीछे नफरत आती है। आपके लेन के साथ में देन भी बनता है, ये बहुत जरूरी बात है। जीवन का द्वंद सब जगह में है, जीवन का द्वंद। अब समत्व बुद्धि का अर्थ है कि बीच में हो जाए, संतुलित हो जाए, क्योंकि समत्व बुद्धि ही योग का सार है। ये आपने देखा, ये तराजू में होता है ना, ऐसे करके कांटा ठीक ऐसे हो जाता है, उधर डालता रहता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल आने तक रुक जाता है। ये हम अपने आप को कैसे ऐसे स्थिर कर सकते सोचना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं, अगर शब्द कोश में भी अगर हम ढूंढेंगे कि भोगी का विपरीत क्या, बोलेंगे योगी, योगी का विपरीत क्या, भोगी। किंतु कृष्ण को ये व्याख्या मंजूर नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि भोगी का विपरीत योगी नहीं है, त्यागी है। त्यागेन एकेन मृतत्वमानसो तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धनम्। क्या कहा, न कर्मणा न प्रजया न धने न, कर्म से नहीं, प्रजा से नहीं, धन से तो कभी नहीं, त्यागे न एकेन मृतत्वमानसो, एक त्याग से ही अमृत की प्राप्ति होती है। तो कहे कि योगी तो वह है जिसके ऊपर न योग की पकड़ रही न त्याग की पकड़ रही, वो पकड़ में नहीं है। वो कैसा है, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी साक्षी। ये साक्षी बहुत समझना चाहिए, वेदांत सब जाने वाले साक्षी शब्द का बहुत उपयोग करते हैं। साक्षी बनो, साक्षी बनो, जस्ट बी द विटनेस, ऐसे करके बोलते हैं। मगर वो साक्षी की परीक्षा कब होती है कि जब आपके सिर में थोड़ा ठंडा पानी गिरे तब आपका दिमाग ठंडा रहता है क्या? पानी तो ठंडा ही गिरा है, किंतु उस समय हमारा दिमाग गर्म हो जाता है। एक महात्मा है, वो हमारे अहमदाबाद में आते रहते हैं, तो पूरी सभा चिक बैठती है, थिएटर में उनका प्रवचन होता रहे, 850 लोग बैठ जाते हैं, सुबह प्रवचन 7 से 8:30 होता है, 6:30 बजे गए तो जगह नहीं मिलेगी। साक्षी मुझको भी कभी कभी बुला देते, मेरे को तो नींद लगती है, सच क्या बताऊं, वो मुझको समझ में नहीं आता है सब, प्रमा प्रमेय शीप रज, ये सीप में रज, रज में सीप, ऐसी वो चलता रहता है। तो अच्छी बात है, उनका विषय मेरा विषय नहीं है, मैं तो देखता हूं मेरा विषय क्या है। हे भगवान, जहां बैठा हो मैं तुम्हारी गोद में बैठू, तुम्हारे नाम को भूलो नहीं, बस इसको छोड़ के मुझे कुछ नहीं आता है। और वो बड़े प्यार से बुलाते तो मैं जाता रहता हूं, बड़ा मुश्किल हो गया, हमारे सामने देखना पड़ता है। क्या हो गया साक्षी, पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज को भी बुला दिए और कहा, महाराज जी अभी आप शाम को क्या भोजन करेंगे? तो उन्होंने कहा, शाम को मैं 2 अंजीर और गर्म दूध लूंगा, अंजीर नहीं है तो 2-3 खजूर दे देना, खजूर नहीं है तब भी कोई चिंता नहीं, खाली गर्म दूध में थोड़ी चीनी गिर देना, मेरा तो उससे हो जाएगा काम। तो जब भोजन दिया तो मुझको सत्यमित्रानंद स्वामी जी को रूम महात्मा को सबको 2-2 अंजीर और 1-1 ग्लास दूध दे दिए। तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी, क्या फर्क पड़ता है भाई, ओम महात्मा को इतना साक्षी चला गया। उन्होंने वो दूध है वो जो लाई थी माई, उसके मुंह में गर्म दूध फेंक दिया। व्हाट यू आर डूइंग, अरे इन्होंने मांगा है, मैंने मांगा है क्या? सत्यमित्रानंद स्वामी जी तो कांपते नहीं है, मैं तो कांप गया भाई, ये इतना गर्म दूध इनके मुंह में फेंक दिया। देखिए श्री राम कृष्ण परमहंस देव कहते हैं त्रिगड़धा 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 कड़ंग 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 धागे त्रिगड़ त्रिगड़ थई धागे त्रिगड़ त्रिगड़ थई धागे त्रिगड़ त्रिगड़ थई झुम तुम त्रिगड़ तत्। ये बोलना बहुत सरल है किंतु मृदंग लेकर के बजाना बहुत मुश्किल है। वेदांत की बड़ी बातों को साक्षी साक्षी मध्यस्थ 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 राग नहीं द्वेष नहीं काम नहीं क्रोध नहीं मोह नहीं लोभ नहीं बोलना बहुत सरल है किंतु ये जब मौका पड़ेगा तब अपने दिमाग को संतुलित रखना बड़ा मुश्किल है। यही महात्मा एक दिन हमारे अहमदाबाद में साक्षी बन के रहो ऐसा बोल रहे थे तो एक आदमी ने जोर से छींक मार दिया छी जोर से इतना जोर से मार दिया अब छींक तो छींक होती है ऐसा भी किसको हो जाता है तो ये तो प्रकृति है क्या करेगा भाई। तो जब छींक मार दी हु इज दैट अंकल ऐसा बोल दिया उन्होंने इतना जोर से चिल्लाए सब लोग हड़गड़ा गए बोले उसको खड़ा करो मैं कहता हूं उड़ा उड़ा फेंको हु इज दैट मैन हु इज दैट मैन। अभी उसको इतना कम नहीं हुआ तो माइक को उठा के स्टेज में खड़े हो गए पहले उसको बाहर फेंकते हो कि नहीं नहीं तो मैं बाहर चला जाता हूं। तो बंदा धीरे से खड़ा हो गया बोलता है साक्षी बनो बड़ा मुश्किल है। कृष्ण है ढोल बजा के बोल रहे हैं भाई तुम तो प्रवचन पटु तो हो जाओगे। हमारे गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज बहुत विनोद करते थे इतना विनोद करते थे कहते थे कि जब कोई भी महात्मा बोलेंगे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म इवना परह देखो न जगत था पंजाब में लोग बोलते हैं बोलो ना न जगत था न जगत है न जगत होगा जगत तो नहीं है। उस महात्मा को घर में बुलाओ छह प्रकार की सब्जी बनाओ छह प्रकार की नमकीन बनाओ छह प्रकार की चटनी बनाओ छह प्रकार के रायता बनाओ दाल भी बनाओ कड़ी बनाओ सांभर बनाओ रसम बनाओ कहीं पर भी नमक नहीं डालो तो महात्मा जी कहेंगे माता जी भोजन में सबरस नहीं है। तो पूछना महात्मा जी सबरस क्या होता है अरे नमक होता है। महात्मा जी जब तीन काल में जगत नहीं रसोई में नमक नहीं बड़ा मुश्किल है बड़ा मुश्किल है। कृष्ण सावधान करते हैं हमको कृष्ण जागृत करते हैं वैखरी वाणी मत करो अपने जीवन को टटोलो अपने जीवन की कैसी भी ऊंची नीची स्थिति में कृष्ण कहते हैं आपको चुनाव करने का अधिकार नहीं है। जब आपने चुनाव किया मुझे ये चाहिए बस वहीं से आपका डूबना चालू हो जाएगा। अरे वो क्या कहती है मीरा हाँ मने चाकर राखो जी चाकर रहसू बाग लगासू नित उठे दर्शन पासू सांवरिया की नंद गली में तेरी लीला गासू मुझे अपना कुछ नहीं चाहिए हाँ जननी चलाओ तेमनी चोली आमी जंत्रो तुम्हें जंत्री हे नाथ जहां बैठा हो तिथि ही बैठो जो देवे स्वीकारो हमारी शरणागति पूरी तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा मेरी कोई इच्छा नहीं मेरा कोई संकल्प नहीं मेरा कोई चुनाव नहीं नो चॉइस। अरे साधु बाबा को क्या चॉइस है भाई इधर रहना है उधर रहना है ये खाना है वो खाना है लोगों को खाना नहीं मिलता है। काफी लोग कभी हमको पूछते हैं स्वामी जी हम आपको इतने साल से देख रहे आप ऐसे ही रहते तो क्या खाते। अरे मेरे प्यारे लोगों को खाना नहीं मिल रहा है बाबा लोगों को क्या है खाने के लिए जो मिलता है सो खा सामने सात चीज रखी है अगर तुम्हारे बस की दो है तो दो खा ले बाकी पांच छोड़ ये जीभ जो है 3.5 इंच है इसके आगे कुछ स्वाद नहीं है और 3.5 इंच के पीछे भी कुछ स्वाद नहीं है उस 3.5 इंच के लिए इतनी लड़ाई करते हो। हमारे शरीर को एक पोषण चाहिए कहते चुनाव मत करो मैं कहता हूं कृष्ण कहते हैं मैं कहता हूं चुनाव का ही त्याग करो चॉइस चॉइस बोलने से इच्छा से प्राप्ति मेरी इच्छा से मेरी रुचि से रुचि कल कहा ना शाम को रुचि नाम वैचित्र तो रुचि क्या है कि मेरी मेरी रुचि से मुझको ये प्राप्त हो मेरी इसमें रुचि है मेरी इसमें रुचि नहीं है। रुचि क्या है भाई रुचि मन का खेल है, रुचि मन का तमाशा है, रुचि मन का द्वंद है, रुचि आपको डावाडोल करती है, रुचि आपको अस्थिर करती है, रुचि जो है आपको संतुलित नहीं रहने देती है। मन ऐसे झूलता है जैसे घड़ी में पेंडुलम झूलता है, वो स्थिर होना चाहिए। महाराज स्थिर हो तो घड़ी कैसे चलेगी, घड़ी चले ना चले मन को एक बार स्थिर करके तो देख, आनंद की अमृत की वर्षा हो जाएगी, किंतु होता नहीं है। द्वंद सदा अपने विपरीत से बंद रहता है। क्या कहा, जिसका जन्म है तो उसकी मृत्यु अवश्य होगी, यू कांट एक्सेप्ट, एस्केपिंग वहां नहीं है। क्या कहते हैं, मौत है किसी की रिश्वत नहीं लेती है नाथ। इसलिए जब बेटे का जन्म हुआ तो इतना खुशी हो जाते हैं, थाली बजाते, संग बजाते, पेड़े बांटते, तो ये नहीं भूलना चाहिए जिस बेटे के लिए कर रहे हो, एक दिन मरने वाला है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 20 साल 50 साल मरना तो है। कहते हैं कि तराजू का कांटा जैसे बीच में ठहर जाता है, ठीक मनोवैज्ञानिकों को पूछो कि मन की स्थिति ऐसे स्थिर कैसे हो सकती है। सारी प्रकृति मनुष्य को छोड़कर मन से रहित है। देखिए, हम मनुष्य किसको कहते हैं, हम कहते हैं मनु के पुत्र हैं इसलिए मनुष्य, ये व्याख्या कमजोर है। अरे जिसको मन है वो मनुष्य है, जिसको मन नहीं है वो पशु है। आहार निद्रा भयमेतुनम च सामान्यमेतत् पशु भी नराणाम। आहार है, निद्रा है, भय है, प्रजोत्पत्ति है, ये तो पशु को भी है, तो हमारी विशेषता क्या है। क्या कहा, श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संवृक्त विविनक्ति धीरः। उपनिषद ने कहा कि विवेक और धैर्य जिसमें है, तो विवेक कहां होता है, हाथ में नहीं होता है, पांव में नहीं होता है, विवेक तो सेरिब्रम में होता है, सेरिबलम में होता है, विवेक तो आपके मन में होता है, तो मन के हारे हार, मन के जीते जीत, तो मन ही जिसको है वो मनुष्य है, जिसको मन नहीं है वह तो पशु है। तो पशुओं में और इंसान में, मानव में क्या फर्क है, मन के कारण मानव जो है वो पशुओं से थोड़ा ऊपर उड़ जाता है। ये कभी कभी ट्रेन में चलो ना, हमारे दिल्ली जब छूट जाता है हरिद्वार की ट्रेनों में, अधिकांश ट्रेन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है, सब यूपी के लोग कहां कोई भी घुस के बैठ जाते हैं, और फर्स्ट क्लास से है ना, एसी बीसी किसी को कोई परवाह नहीं, जहां मर्जी उनसे वो दंगा भी नहीं कर सकते आप। ऐसे ही आप इलाहाबाद से चढ़ो, लखनऊ आते आते तक यही हाल रहेगा, ऊपर बैठेंगे, पांव लंबी करेंगे, मूंगफली खाएंगे, नीचे डालेंगे। अब उनसे कहो, भाई साहब आप ऊपर बैठे हो, मूंगफली खा रहे हो, छिलका जमा, महात्मा जी पढ़े लिखे हो कि नहीं, डार्विन ने क्या कहा, जो ऊपर से चीज गिरेगी तो नीचे ही गिरेगी ना, ऊपर थोड़ी जाएगी, तो वह छिलका नीचे तो गिरेगा, ऊपर थोड़ा गिरेगा, हाँ कितना पानी ऊपर डालो, ऊपर गया गया फिर बाद में नीचे आता ही आता है, तो उनसे क्या कहो आप, नियंत्रण नहीं उनके ऊपर में, तो उनको ऐसे कहो, देखो पशु है वो कहीं पर भी गंदगी करता है, इंसान नहीं करता है, हाँ सो तो है, तो आप तो इंसान है, आप तो पशु नहीं है, तो कहना क्या चाहते हो, यही एक रूमाल में कचरा जमा करो, ट्रेन खड़ी हो जाएगी तो वहां डाल देना, चौकी बोली रहे वो महात्मा के ऊपर कचरा ना गिर, ऐसा बोलते हैं, अभी क्या करो उनके लिए। तो ये जो पशु है वो हमारे भीतर भी है, हमारे भीतर सबके भीतर थोड़ा बहुत तो पशु है। हाँ एक शेठ के एक कन्या थी, उनकी पत्नी तो मर गई थी, तो बड़ी की बड़ी गुणवान थी, एमए पीएचडी करा दिया। अब शेठ के धंधे में तीन और साझेदार थे, उन्होंने कहा कि ये आप हमारी बेटियां तो आप ही की बेटियां हैं, तो एक दूल्हा ठीक करो। तो एक अच्छा दिन देख करके तीन पार्टनर ने तीन दूल्हे ढूंढ लिए, पिता ने एक और ढूंढ लिया, सबको 11-11 रुपए, सबको नारियल भी दे दिया गया। अरे गड़ा गड़बड़ हो गया, बेटी तो एक है, चार लड़के तय हो गए, अब क्या करें। किसी पहुंचे हुए महात्मा के पास गए, महात्मा जी ने कहा ऐसे मत करो, ये तीन फूल ले लो, रस्ते में जो मिलेंगे उनके ऊपर में डाल देना। बाहर निकले तो तीन पशु ही मिले, एक गधी मिली, एक कुत्ती मिली, एक बिल्ली मिली, उन पर डाल दिए, डाल दिए तो तीनों जैसी इनकी बिटिया थी वैसे हो गई। जैसे पुड़िया खोलो तो लक्ष्य कैसे निकलता है, 10 पुड़िया खोलो सभी में से लक्ष्य वैसा ही निकलता है, जैसा एक ऐसी कुड़िया, अब मेरी कौन सी पराई पता नहीं, शादी कर दे। अब थोड़ा वो मन में लगता है इसमें मेरी कौन सी है। फिर महात्मा जी बोले चिंता मत करो, इनके सबके घर में एक एक चक्कर लगा लो, पता हो जाएगा। पहले घर में गए तो समधन क्या बोली, क्या बताऊं समधी जी, मेरे तो पहले 6 और बहुएं हैं, न लीपने की न पोतने की, 10 बजे तक उठती नहीं, रात 11 बजे तक छटपटाती रहती है, दिन भर खाने को चाहिए, काम धाम कुछ नहीं। जब से आपकी बेटी आई है, हाय हाय मर जाऊं, सबके घर में ऐसी बहू हो, क्यों? अरे इतना काम करे, सारे घर का अकेला कर ले, हाँ सब नौकर चाकर को छुट्टी कर दिए, सारा काम यही करती है। अब देखो बिना मां की बेटी है कोई ऐप तो होता ही है, इतने सारे गुण हैं तो क्या बताएं, रास्ते में जो चीज आती है लात मारती चलती है। तो पता हो गया ये कौन है मैडम, DON के ये भाई है, डॉम की मैडम है। तो फिर दूसरे घर में गए तो बोले कि अरे तुम्हारे समधी हैं, वो रात 9 बजे आए, 10 बजे आए, 11 बजे, मैं तो खुर्राटे भर के सोती हूं, वो इतना दरवाजा खटखटाएं, इतना खटखटाएं कि मैं तो जागू नहीं, सारा मोहल्ला जाग जाए। जब से तुम्हारी छोरी मेरे घर में ब्याह के आई है मेरे को तो सुख हो गया। उसके ससुर गली में घुसे नहीं उसको खुशबू आ जाती है, वो ऐसे उठती है छठ और ससुर को, बस बहुत अच्छी है। अब क्या बताएं, बिना मां की बेटी घर में अकेली रही ना, दूसरी कोई लुगाई बोलते हैं स्त्री को, ओके दूसरी कोई लुगाई घर में आ जाए, बस लड़पीट करके उसको जब तक मोहल्ले से बाहर नहीं निकाल दे तब तक उसको शांति नहीं होती है। पता हो गया ये मैडम देवजी है, हाँ तो यही है वो। तो वो तीसरी घर में गए, आहा आपकी बेटी के क्या गुणानुवाद, चलती है चटक चाल, बोलती है जैसे घंटी बज गई, सफाई तो इतनी करती है, इतनी सफाई, सब सफाई करती है। बिना मां की बेटी अकेली रही, अब तो क्या है, खाना खाने बैठती है ना, बस थाली को चाटती रहती है। पता हो गया ये मैडम म्याऊं है। तो आकृति में आवृत्ति में हम मनुष्य हो सकते हैं, किंतु प्रकृति में और प्रवृत्ति में मनुष्य है कि पशु, ये निर्णय करना बड़ा दुष्कर है। तो जिसके मन में मन है, जो मन के आधार में है वो तो मनुष्य है, और बिना मन के है तो वो तो पशु है। तो हमारे कृष्ण महाराज क्या कहते हैं कि ध्यान रहे, जिस चीज को मन चुनता है उसी से थोड़ी देर में उब भी जाता है। आरो रुक्षो रूढ़स्य तस्यैव शमः कारण, शम मने क्षमता, क्षमता नहीं होती है ना, जिसको आप कहते हो कि भाई क्या बिल्कुल स्मशान है क्या, रेडियो चला, 3-4 दफे बोल देता है, रेडियो चला देते हैं, और रेडियो में क्रिकेट कॉमेंट्री आ रही, राम 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 राम, 10 मिनट क्या सिद्ध बनकर, हा शांति हो गई। तो पहले तो शांति थी, रेडियो चलाने के लिए आपने कहा है, टेप रिकॉर्ड बजाने के लिए आपने कहा है, टीवी चलाने को आपने कहा है, और फिर आप ही उससे उब गए। जिस वस्तु विषय को मन प्यार करता है, चॉइस करता है, चुनता है, जिसके लिए निर्णय करता है, जिसको चाहने लगता है, उसके चाहने के साथ में अचाह, प्रेम के साथ में धिक्कार, पीछे 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 चलता है। जिसको आपने चाहा उससे उब गए। क्या पसंद है उमा माता जी आपको, बोलो, रसगुल्ला पसंद है क्या? एक रसगुल्ला खाए तो खुश होती है, दूसरा दिए तो लगता है वाह बहुत बढ़िया, तीसरा तो हाय 3 रसगुल्ले मिल गए, चौथा है तो स्वामी जी अब मेरे बस की बात नहीं है, अरे नहीं खाओ अम्मा माता जी क्या बात है खाओ, मुंह खराब करके खा लेगी, 5वां है तो जाओ अभी मेरे बस की नहीं, आप ठहरो आश्रम में, मैं अपने घर जाती हूं। क्यों भाई क्या हो गया? एक गांव में बहुत दिन के बाद जाना हुआ तो उनके आयोजक रहे गिरीश भाई जैसे, बड़े ही प्रेमी थे, स्वामी जी बहुत साल के बाद में आए हो, बहुत लोगों की इच्छा है आप उनके सबके चरण घर में चरण डालो, हमने कहा लिस्ट बनाओ, 100 लोग से ज्यादा हो जाएंगे परिवार नहीं, रोज का 10 कर लो, सुबह 1.5 घंटा बोलना है, शाम को 1.5 घंटा बोलना है, बीच में 15-15 मिनट 10 घर में जा सकते, मगर नियम ये रहेगा किसी के घर में भी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बोलना, ना, मेरी इच्छा है तो मैं पानी पीऊं, नहीं तो पानी भी नहीं पीऊंगा। खाने पीने की बात नहीं है, दस के बारह घर कर लेना मगर खाने, हाँ सो तो हो सकता है। फिर आपकी सेवा क्या करेंगे, थोड़ा कीर्तन करेंगे भगवान का, हाँ थोड़ा प्रसाद रखे, हम सबको प्रसाद बांट देंगे, सबका समाचार पूछ लेंगे, बड़े बूढ़े हैं बीमार है तो उनको थोड़ा देख लेंगे, ये तो हो सकता है। अब पहले घर में गए तो उन्होंने चांदी का ग्लास, चांदी की ट्रे, मलाई वाला दूध, बादाम, पिस्ता उसमें सब डाला हुआ है, केसर, इतना ग्लास लेकर के ऐसे करके दिया। महात्मा जी लो, तो हमने लिया, सिर में लगाया, बहुत प्रार्थना किए, हमारे साथ गए थे गिरीश भाई, उन्होंने कहा महाराज जी पी लो। तो गिरीश महाराज खुश हो गए, इतने सारे लोग में मेरे कोई महाराज ने तो पी लिए। दूसरे घर में ही नाटक हुआ, तीसरे में हुआ तो उन्होंने ले तो लिया, अब सोचा पीऊं कि ना पीऊं, मगर फिर भी जब दिया ही है तो पी लिया। चौथे घर में दिया तो वह पकड़ा ही नहीं, बोला मैं घर जाता हूं। काहे भाई तुम काहे घर जाते हो, जब मुझको तुम बंदर के माफिक जिम्मेदारी जैसे घर घर में घुमाता है, तुम घुमा रहे हो तो फिर तुमको भी थोड़ा प्रसाद मिलना चाहिए ना। अगर आप समझते हो कि महात्मा हर घर में जाकर के एक गिलास दूध पी सकता है, तुम थोड़ा तमाशा करके देखो, गिरीशानंद बन जाऊंगा तो क्या हाल होगा, तो ये पता हो जाएगा हम समझते क्या है अपने आप को, ये संतुलना नहीं होती। ठीक है भाई, एक घर में गए तो पी लिया, दूसरे घर में गए तो ठीक है प्रसाद सबको बांट दो, एक चम्मच पी लो छोड़ दो, किंतु ये होता नहीं है, एक्सट्रीम है हमारा, इधर नहीं तो उधर, बीच में नहीं रह सकते। क्षमा कहते हैं कृष्ण, कहते हैं तस्सैव क्षमः, वो समन जो है संतुलन करना है, मध्यस्थी करना है, जहां संकल्प है वहां विकल्प पूरा आएगा। अगर आप प्रेम करेंगे, घृणा तो पीछे आने ही वाली है। अभी एक बात देख लीजिए कि इसके लिए हम करें क्या। देखो आप थोड़ा अपने आप को थोड़ा प्रयत्न कर सकते हैं, कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, ये कोई नहीं देखता है ऐसी कौन सी जगह है, वो तो मेरा वॉशरूम बाथरूम ही है। ठीक है, तो बाथरूम में क्या करते हो, उठ करके दांत साफ करते हो, हाँ शीशी के सामने खड़े होते हो, हाँ, तो पूरी जागृति से अपने आप को देखना कि दोनों पांव में वजन कहां आता है, दाहिने में आता है कि बाएं में आता है। सो तो पता नहीं, स्वामी जी कभी पता नहीं किया, कोई आज कर लो कल कर लेना ध्यान देकर के, तो पता हो जाएगा कि हमको बाएं पांव में वजन देकर के खड़ा होने की आदत है। क्या जितनी देर तक दांत साफ कर लेते हो, दाढ़ी बना लेते हो, नहा लेते हो, तो पूरी अवधि में आप पूरे बाएं ही पांव में वजन देकर खड़े होते हो क्या? नहीं महाराज, थोड़ी देर के बाद में दाहिने में आ जाता है। तो बायां का वजन थोड़ी देर में दाहिने में आ जाता है। घोड़े को देखा है, टांग एक टांग ऊपर करके रहता है घोड़ा, थोड़ी देर में उसको नीचे रख देता है, दूसरी टांग करता है। ऐसे हमारी हालत भी यही है, हम दोनों पांव में संतुलन वजन करके खड़े रहना जानते ही नहीं है। प्रयत्न करो, दोनों टांग में ऐसे खड़े रहना जागृति पूर्वक, भी वजन बाएं में नहीं है, दाहिने में नहीं है, संतुलित है, खड़े रहो एक मिनट, दो मिनट, पंद्रह मिनट सुबह, पंद्रह मिनट शाम, देखो दोनों पांव में संतुलित वजन करके खड़े रहने का अभ्यास करो क्रमशः, वेदर यू लाइक और यू डोंट लाइक, डिजायर और नॉट, आपका मन भी शांत हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? बिल्कुल होगा, कहीं से तो आरंभ करना पड़ेगा। ये कहानियां किससे सुनाने से क्या होता है, तो पहले इतने साल से सुन रहे हैं आपने, अपने आप को प्रयत्न करके देखो। क्या कहते हैं, समम शिरो ग्रीवा कायम स्थिर सुखम आसनम, मस्तक है, गला है, सीना है, उसको स्थिर रखकर बैठना है। क्या कहा, समम एक ही पंक्ति में, थोड़ी भी टेढ़े नहीं। पूज्यपाद ब्रह्मलीन सिंह स्वामी अखंडानंद जी महाराज है, उनको किसी ने पूछ लिया महाराज ध्यान कैसे करें, बोले बाबा सीधे बैठ जाओ। क्या कहे बाबा, सीधे बैठ जाओ, बहुत कड़क भी मत बैठो और ढीला भी मत बैठो। पर बोले महाराज जी क्या करना है, बोले देखो आंख खुली रख करके दुनिया को नहीं देखना, आंख बंद भी नहीं रखना, क्योंकि अधिकांश महाराज जी बड़े प्रैक्टिकल थे, कहते थे अधिकांश लोगों के ठाकुर घर कहां होता है, रसोई में होता है, और बंबई में तो हर घर में रसोई में ही एक छोटा जगह होता है जहां ठाकुर का दिया जल जाता है, हर घर के अंदर में भगवान के एक पूजा रूम के अलग जगह में नहीं होता है। तो कहते हैं देखो भगवान के सामने अगर खड़े रहे खुली आंख रख करके, तो जितना भगवान दिखेंगे उतना आपको वो गैस भी दिखेगा, चाय का डब्बा दिखेगा, चीनी का डब्बा भी दिखेगा, पकड़ने वाला पकड़ भी संडासी क्या बोलते हैं सांसी वो भी दिखेगा, फिर छन्नी दिखेगी, कप तस्त्रे दिखेंगे, तो भी भगवान को देखते देखते मन चाय में चला जाएगा, वाघ बकरी चाय, लिप्टन रेड लेवल ग्रीन लेवल। तो भगवान तो रहे अपने घर में और आपका मन गया दूसरे घर में, तो बाबा आंखें खुली करके मत बैठो, आंखें बंद ही मत करो, सवेरे सवेरे उठे तो झपकी आ जाएगी ना सागरी दृष्टि। बोले नारायण, नारायण बोलते थे, नारायण यहां पर दृष्टि रखो। तो क्या कहा, समम शिरो ग्रीवा कायम, मस्तक गला और सीना एक लाइन में रखो, बहुत कड़क से मत बैठो, बहुत ढीले भी मत बैठो, और नाक के सामने दृष्टि रखो। बस बाबा ऐसे ही करते चले जाओ। फिर कभी कभी वो मां आनंदमयी मां की बात करते थे, मां क्या कहती है, बनत बनत बन जाए, जो चलता चला जाता है वो पहुंच जाता है। एक माचिस को घिसे, अगर आग उत्पन्न नहीं की फिर से घिसे, फिर नहीं तीसरी बार घिसे, रगड़ते रहो, आग है सर्वत्र, अग्नि अवश्य उत्पन्न हो जाएगी। ये संतों का कहना है, किंतु हमारा मन जो है आधा है इधर आधा है उधर, पश्चाताप, क्योंकि जैसे कि हमको क्रोध आ गया, अभी क्रोध आ जाने के बाद में थोड़ी देर के बाद में क्या बताया, ना बोलियो तो सारू था, तू बड़ी एवं छो ने कि मारा बोलिया वगर रेवायज नहीं, हूं बोलू शू बापी ज मरू, बड़बड़ियो मारो स्वभाव, मारा मन में कहीं नहीं हो, हम मन में कहीं नहीं, अरे क्या मतलब है तुम्हारा, मेरे मन में कुछ नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है हाव हाव करके बोल देती हो, मेरे मन में कुछ नहीं, फिर बाद में जाकर के उसको आलिंगन करके प्यार भी कर लेती हो, अरे उसकी नाक काट के सबके बीच में रख दी, हाँ 20 आदमी के बीच में उसको धूर्त कर दिया, अब जाके आलिंगन करने से क्या होता है। तो जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसके पीछे पश्चाताप भी होता है, नहीं बोले होते तो अच्छा होता था, किंतु इससे अच्छा है कि क्रोध करे ही नहीं, तो पश्चाताप भी नहीं करना पड़ेगा, किंतु ये होता नहीं है। फिर बाद में क्या होता है कि क्रोध आने के प्रारंभ होते होते पश्चाताप होना भी चालू हो जाता है, साइमल्टेनियसली, बाद में नहीं साइमल्टेनियसली, तो दोनों ही चलते हैं। कैसे, रेल की पटरी देखी है ना, दो रहती है, दो दोनों साथ साथ चलती है, दूर तक मीलों तक चलती है, किंतु कभी मिलती नहीं, बड़ा मुश्किल बात है। क्रोध है और पश्चाताप दोनों साथ साथ चलते हैं, किंतु दोनों कभी मिलते नहीं, क्या करें इनको, करना क्या है, यही करना है कि मुझे क्रोध करना ही नहीं, तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है, तो पश्चाताप ही मत करो, या तो आप इस किताब को इधर से खींचो नहीं तो इधर से खींचो, या तो क्रोध मत करो तो पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, या तो पश्चाताप मत करो फिर धीरे धीरे क्रोध करना भी बंद हो जाएगा। इट्स ऑल अप टू यू, बॉल इज इन योर ओन कोर्ट, यू टू डिसाइड, कहीं तो प्रारंभ करना पड़ेगा, तो पहले क्रोध करने के बाद में पश्चाताप करना बंद कर दो, तो 2-4-5 दिन में मन सोचेगा ये क्या हो गया, मेरा पश्चाताप नहीं हो रहा है, क्यों, मेरे क्रोध की कोई कीमत ही नहीं है, तो फिर क्रोध करना भी धीरे 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 गल जाएगा, क्योंकि मन तो धोखा देता है, मन कहता है क्रोध किया है पछताओ। तमाम संत लोग ये कहते हैं कि गुनाह करते हो कन्फेस करो, ये जीसस क्राइस्ट ने भी यही कह दिया, वो जो चर्च होते हैं तो चर्च के बाद में एक बॉक्स रखते हैं, क्या करते हैं कन्फेशन, वहां जाकर के बोल दो हमने ये गलती की है, बस माफ हो गया, तो रोज रोज गलती करते रहो, रोज रोज माफी मांगते रहो, फिर एक दिन खुद अपने आप से उब जाओगे, गलती करना बंद कर दो। तो ये है मन जो है, कृष्ण कहते हैं जो बीच में है, जो संतुलन में है, जो मध्य में, वो योग है दोनों ही, क्योंकि क्रोध करना भी उचित नहीं, पश्चाताप करना, तो प्रेम है तो फिर घृणा बनेगी। अभी क्या होता है कि हमारे जीवन में एक ऐसी स्थिति हो कि जब हम कोई भी कार्य करें तो तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय हो जाए। कैसे हो जाए, तो कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आप सुने होंगे, वो बहुत बड़े हमारे देश के डॉक्टर रहे, तो वो एक बार आइंस्टाइन को मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने फोन किया तो उनकी पत्नी ने कहा ऐसा कीजिए आप सवेरे ठीक 11 बजे आना, भाई एक मिनट भी इधर उधर नहीं करना। ओ तो उन्होंने सोचा ठीक है भाई, रामानंद बड़ी कोशिश के बाद में भी वो एक मिनट लेट पहुंच गए, एक मिनट लेट पहुंच गए। तो पति ने कहा देखो हमने कहा था ना आप लेट नहीं आना, क्या निकल गए क्या घर से बाहर, मैंने तो देखा नहीं उनको। नहीं नहीं नहीं, वो बाथरूम में गए नहाने के लिए। ओ तो नहाने के लिए गए हैं तो फिर अभी तो निकलेंगे। वो कोई भरोसा नहीं कब निकलेंगे। पत्नी ने कहा भरोसा नहीं कब निकलेंगे, ठीक है बाथरूम में तो है ना, कभी तो निकलेंगे, मैं इतने दूर से आया हूं प्रतीक्षा करूंगा। ये महाराज है वो 6 घंटे के बाद में निकले। जब 6 घंटे के बाद निकले वो इतने प्रसन्न थे, क्या अरे ये गणित का जो इक्वेशन था ना वो सॉल्व हो गया। बताइए वो बाथरूम में नहाने गया था कि गणित का इक्वेशन है ना, तो उसको सॉल्व करने गया था। तो आइंस्टाइन ने कहा कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का सिद्धांत मैंने तय किया कि विश्व है वह विस्तृत हो रहा है। कैसे करके, पानी के टब में बैठा था तो उसमें ऐसे ऐसे भी कर रहा था मैंने, तो साबुन की वजह से वहां बुदबुदा होता था। बुदबुदा आपने छोटे को देखा है, बच्चों को वो साबुन के पानी में नली लेके ऐसा करते हैं ना, फूंक मारते हैं तो उसमें से गुब्बारा का जैसे रंगीन निकलते हैं, तो वो पहले छोटा होता है, धीरे 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 हवा में आते आते बड़ा हो जाता है, फिर बहुत बड़ा होकर के फूट जाता है। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा टब में पानी के बीच में वो जो साबुन है उसकी बुदबुदे हो रहे थे, धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। बस मैंने तय कर लिया कि ये विश्व भी अपना विस्तार करता चला जाता है, विश्व में हर चीज अपने आप को विस्तृत करती है, ये नियम है वो मैंने खोज लिया। तो अधिकतर लोग हैं वो विचारों में नहीं जीते हैं, वो कहते हैं कि एक्सपांसन, ये हमारे ऋषि हैं वो क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार है, ओम भू ओम भू ओम स्वाहा ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्य, वो पूरे विस्तार है, ब्रह्मांड का विस्तार होता है। तो ब्रह्मांड का विस्तार जो वैदिक वांग्मय के ऋषि ने कहा उसको उसने देखा है। ये देखिए पश्चिम ने हमें कोई, पूर्व ने हमें कोई चीज, पूर्व तो हमें पश्चिम ने हमें कोई चीज नहीं नहीं दी। अभी कुछ दिन के पहले हम एरिजोना में थे, ये चुशान यूनिवर्सिटी में मेडिकल सेंटर में, तो उनके जो डॉक्टर रहे गोलम हैरी मुझे कहते रहे स्वामी जी वुड यू लाइक टू हैव सम टर्मरिक ड्रिंक। मैंने कहा नहीं मेरा खाने पीने का अभी टाइम नहीं है इसलिए भी नहीं चाहिए। बट बाय द वे व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस टर्मरिक ड्रिंक। हो हमारे यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने उसको रिसर्च किया है, जापान में प्रोडक्ट होता है, एरिजोना से हम सेल करते हैं। मैंने कहा टर्मरिक ड्रिंक का रिसर्च किया, अरे हमारे यहां तो बच्चा पैदा होता है तब से बिना हल्दी के गुजरा ही चलता नहीं है। लड़की शादी करती है तो बदन में हल्दी लगाती है, मुंडन कराते हैं तो हल्दी लगाते हैं, जने होता है तो हल्दी लगाते हैं, पूजा में भी हल्दी है, आंगन में जब स्वस्तिक करते हैं गणेश उसमें भी हल्दी है, अरे अचार में हल्दी है, दाल में हल्दी है, सब्जी में हल्दी है, अरे सफेद चावल खाके उग गया तो उसमें भी थोड़ी हल्दी डाल करके पीला चावल करके खाता है। हल्दी तो हमारी माता पिता बंधु सका है, तो इसमें तुमने रिसर्च क्या किया? नो इट्स अ थर्मरिक ड्रिंक। अरे तुम्हें पता है हमारी दादी हमारी नानी और उनकी दादी और उनकी नानी, उनकी दादी और उनकी नानी भी कभी भी गला खराब हुआ तो गर्म पानी में थोड़ा नमक थोड़ा हल्दी डाल के पिलाती थी, और किसको पानी पसंद नहीं तो गर्म दूध में हल्दी डाल के पिलाती थी। हल्दी तो माता पिता बंधु सखा है, हमारी तो रसोई बिना हल्दी के चलती नहीं, और पूजा में कुछ नहीं है तो हल्दी के गांठे रख लेते हैं उसको ऐसा करके करके निकालते हैं, और कभी बहुत ज्यादा जल जुकाम हो गया नाक बह रहा है हल्दी का जला देते हैं मुंह को उसको सूंघते हैं उससे भी अच्छा होता है। वी नेवर न्यू, तो तुम लल्लू हो, तुम नहीं जानो इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि भारत है को। अरे भारत को तो पहले सब पता था, तुम उसको अपने ढंग से होते हो। वी आर हैविंग वी रिसर्च दिस, व्हाट रिसर्च दिस। तो कहते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने ब्रह्मांड का अर्जुन कहा था वो आइंस्टाइन बता रहा है, किंतु मन को वहां जोड़ने से होता है, मन को उस स्थिति में लाने से होता है, मन को संतुलित करने से होता है। हमारे पास में दो लोग हैं, एक तो बुद्धिवादी है, जो बुद्धिवादी है वो प्रखंड बुद्धि में जीवन यापन करते हैं, और दूसरे लोग हैं वो बुद्धिवादी नहीं है वो ऐसे ही चलते हैं। तो जो बुद्धिवादी है क्या करते हैं, उनको इच्छा है, इनको तृष्णा है, उनको कामना है, उनको वासना है, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कुछ प्रयोगशाला कर रहे हैं। जैसे कि आइंस्टाइन जैसा आदमी, क्या किया वो बाथरूम में नहा रहा है, नहाते नहाते उसकी वृत्ति है उन बुद्बुदों के पीछे से सृष्टि के विचार को देख पाती है। तो हमारे जीवन की गतिविधि में क्या हम ऐसे योगारूढ़ हो सकते हैं? मन का शमन क्या है? मन का शमन ये कि जहां वासना नहीं है, जहां कामना नहीं है, जहां इच्छा नहीं है, जहां कोई संकल्प नहीं है, तो वहां पर एक मन स्थिर हो जाएगा। ऐसी स्थिरता में कहते हैं कि एक कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार क्या हो गया, ये आइंस्टाइन है, देखिए वो किसी के यहां भोजन के लिए गए तो उनको भोजन को शाम को 7 बजे बुलाया था, तो 7 बजे आ गए। भोजन पूरा होते होते 8:30 बज गए, बोले आइए थोड़ा वरांडे में बैठेंगे। आइंस्टाइन खुद ही कहे, मान लीजिए कि मधुबाबू हैं आपके यहां, गिरीश भाई हैं, वो भोजन के लिए आए। गिरीश भाई आए तो आप दोनों ने प्रेम से भोजन किया, तो गिरीश भाई आपको बोल दें कि मधुबाबू थोड़ा वरांडे में बैठेंगे। हाँ हाँ जरूर बैठेंगे, घर आपका है, वरांडा आपका है, इनको भोजन के लिए बुलाया है, तो बैठ गए तो 8:30 बजे भोजन हो गया था, 9:30 बजे, 10 बजे। तो गिरीश भाई थोड़ी देर में घड़ी देखे, तो आइंस्टाइन भी थोड़ी देर में घड़ी देखते थे, तो वो भी देख रहा है कि भाई बैठे हैं, चुप से बैठे हैं, कुछ बोलना उलना नहीं है, घड़ी देख रहा है। अब 10 बज गया, अब 11 बज गया, वही गिरीश भाई घड़ी देख रहे, आप भी देख रहे हो, तो घड़ी क्यों बार बार देखता है? तो फिर कुछ तो सोचना चाहिए, भाई क्या बात क्या है। ओ मधुबाबा सोच रहे हैं गिरीश भाई क्यों जाते नहीं, गिरीश भाई के मन में मधुबाबू को क्या पता नहीं। आइंस्टाइन जिसके घर में गए हैं वो सोच रहा है ये बार बार घड़ी क्यों देख रहा है। तो क्या हो क्या गया कि वो जब 11:30 बज गया तो फिर आइंस्टाइन ने ऐसे कहा जिसके घर में गए थे, मान लीजिए कि गिरीश भाई ने कह दिया, मधुबाबा ये बहुत रात हो गई है, लगता है कि अभी हम लोग को जाना चाहिए, तो हम लोग को जाना चाहिए, और हवाई जहाज में वो लड़की रहती है ना, मैं आपकी विदा लेती हूँ। सचमुच में तो विदा वो आपको देती है और बोलती खुदे मैं आपकी विदा लेती हूँ। तो गिरीश भाई तो आपके घर में मेहमान है, वही बैठे हैं, घड़ी देख रहे हैं हर घंटे में, आधे घंटे में, फिर आपको बोल दे, लगता है कि हमको जाना चाहिए, 11:30 बज गए। तो मधुबाबू भी ऐसे कह दे, हाँ लगता है जाना चाहिए, अच्छा तो जाइए, नमस्ते, फिर कभी आ जाना। अरे मेरा घर है भाई, तुम आगे बैठे हो। तो आइंस्टाइन किसके घर में गए और भोजन करने के बाद में भूल गए कि मैं किसके घर में आया हूं, वो समझ रहे ये मेरे घर में आया, ये जाए तो मैं सोऊं, और वो सोच रहा है ये जाए तो मैं सोऊं। तो ये देखिए मन की कैसी स्थिति है, ऐसी अपरिछिन्न कहते हैं, जिसमें कोई जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, सुसुप्त नहीं, शांत हो गया। कैसे शांत हो गया? जैसे हवा नहीं चलने पर दिया कैसे शांत, ऐसे शांत हो गया। मन में एक ही विचार है, ये नहीं उनको याद कि मैं किसके घर में गया। तो बोले कि अभी हमको अलग होना चाहिए, लगता है सोना चाहिए, हाँ अच्छा ठीक तो जाइए। अरे कहाँ जाऊं, मेरा घर है भाई, तू जा। तो ये जो स्थिति है मन की कैसे हो सकती है? जब मन पूरा शम, अपने आप में पूरा शमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, द्वंद्वातीत हो जाएगा। क्या कहा कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान, केवलम ओनली दैट नॉलेज, केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, बस ऐसे द्वंद्वातीतम, एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। तो ऐसा जो मन है वो योगारूढ़ हो सकता है। तस्सैव शमः कारण मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, सबके समयदान के लिए धन्यवाद। परमात्मा सभी का मंगल करे, शुभ करे। नमो नारायण।